ओम शांति। राजयोग का प्रयोग करें हम अपने मन और तन पर, ताकि हम सदा स्वस्थ रह सकें और सदा खुशनुमा रह सकें। ये थोड़ी सी बातें मैं आपको पिछले 30 साल से जो मेरा अनुभव है मधुबन घर में, और जो रिसर्च की है हार्ट के ऊपर, हार्ट के पेशेंट्स, डायबिटीज के पेशेंट्स, मोटापे के पेशेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर या दूसरी बीमारियां जो होती हैं, मन और तन की बीमारियां, उस पर जो हमने प्रयोग किए उसका मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा। देखो, जब सतयुग में थे तो हम सभी निरोगी थे, नहीं थे? कोई देवता बीमार था? किसी देवता को हार्ट अटैक हुआ? किसी देवता को ब्लड प्रेशर डायबिटीज थी? यस। किसी देवी देवता को थी? नहीं थी ना। सतयुग में हम सब निरोगी थे और सदा खुश थे, क्योंकि आत्मा के पास जो एनर्जी थी ना, सात एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी हमारे पास है? पहली एनर्जी ज्ञान, अर्थात सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। दूसरी पवित्रता। ज्ञान सार रूप में क्या है? चार चार बातों में आता है, ए बी सी डी। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन माना संबंध, और डी फॉर ड्रामा। तो जितना इसको गहराई से, ये बात को हम गहराई से रिवाइज और रियलाइज करते हैं, दिल में जितना इसको रिवाइज और रियलाइज करते हैं, उतना क्या होता है, हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है, मन और बुद्धि शुद्ध होता जाता है, पवित्र होता जाता है। तो दूसरी एनर्जी कौन सी? पवित्रता। तीसरी एनर्जी है शांति। चौथी एनर्जी है निस्वार्थ स्नेह, या प्यार कहते हैं सत्य, निस्वार्थ स्नेह, अतीन्द्रिय सुख आनंद, और आठ शक्तियां। आठ शक्तियां जब कौन कौन सी शक्ति है? सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, राइट। विस्तार है दुनिया, और इस सार क्या है? सूक्ष्म वतन में बापदादा की गोद। सूक्ष्म वतन में बापदादा की गोद क्या सार है? ये देह और देह की दुनिया का विस्तार है, तो विस्तार को सार में लाने की शक्ति। फिर समेटने की शक्ति, अर्थात सूक्ष्म वतन से भी अपने मन बुद्धि को समेट के, सूक्ष्म शरीर को भी समेट के, अशरीरी आत्मा बन के परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड होने की शक्ति, वो है समेटने की शक्ति। और जब वहां से ऐसी शक्ति आती है, जब हमारे कर्म पाप कर्म भस्म होने लगते हैं अशरीर स्थिति से, तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है। जो भी दुख दर्द तन के, मन के, धन के, संबंध संपर्क के, दुनिया की परेशानियां, वो हम सहन कर सकते हैं। और खाली सहन नहीं कर सकते, समा भी सकते हैं, समाने की शक्ति भी आ जाती है। और नए से नए जो पाप कर्म, पीछे पाप कर्म कितने के पता नहीं हमको, उनको सामना करने की शक्ति भी आ जाती है, राइट। और जो हमको तंग कर रहे हैं उनको सहयोग करने की शक्ति भी आ जाती है, राइट। तो ऐसे आठ शक्तियां। तो आत्मा के साथ जब सातों एनर्जी भरपूर थी, अर्थात आत्मा सतो प्रधान थी, सत्युग में सतो प्रधान माना, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर। सत्युग में आत्मा सतो प्रधान थी, पावन सतो प्रधान, तो सातों एनर्जी से भरपूर थी। तो आत्मा सतो प्रधान थी, तो आत्मा राजा थी, तो बुद्धि को भी सातों एनर्जी मिल रही थी, मन को भी सातों एनर्जी मिल रही थी, और संस्कार जो थे हमारे वो 36 दिव्य गुणों से संपन्न थे, जिसे हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न। देवताओं की क्या क्वालिटी है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, माना हर गुण में 100%। 16 कला का मतलब क्या? हर गुण में 16 आना। 16 कला नहीं, डांस करने की कला नहीं है, खाना बनाने की कला नहीं है, सजाने की कला नहीं, हर गुण में 100%। संपूर्ण निर्विकारी, चिंता भी नहीं, कोई भय भी नहीं, जल्दबाजी भी नहीं, ईर्षा द्वेष भी नहीं, आलस्य का भी अंश नहीं, अलबेलापन भी नहीं, तो एकदम संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार का अंश तक भी नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम, जो चार नियम और चार मर्यादाएं अभी की है ना, चार मर्यादाएं, संपूर्ण पवित्रता। वैष्णव भोजन, भोजन शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, बस बाबा और मुरली का संग और दैवी गुणों की धारणा, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन, चार बातें, चार ब्राह्मणों के नियम है। सुबह पावरफुल अमृत वेला, फिर पावरफुल मुरली, रोज क्लास में मुरली, और फिर सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन करना, और सोने के पहले सच्चा सच्चा पोता मेल, जो आज की कल की मुरली थी ना, सच्चा सच्चा पोता मेल आज की मुरली है, तो वो बाबा को देना। जो इन चार नियम और चार बातें परफेक्ट, पुरुषोत्तम है ना, उत्तम पुरुष, उत्तम आत्मा, जो उत्तम आत्मा हम बन के इसके मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं, 100% मर्यादित बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी की ये जो पांच बातें हैं ना, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये यहां की बात है सतयुग की बात है? यहां बनना है कि वहां बनना है? यहां बनना है ना। वहां तो कोई हमें शक्ति चाहिए क्या? वहां शक्ति चाहिए भी नहीं, दैवी गुण भी ज्यादा यूज में नहीं, प्रैक्टिकल स्वरूप है ना हमारा। और अहिंसा परमो धर्म माना, काम विकार सब कामनाएं छोड़ी तो लाइट का ताज आ गया, क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके बाल बच्चों को छोड़ दिया तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। तो अहिंसा परमो धर्म को यहां बनना है कि वहां बनना है? वहां तो अहिंसा कुछ है ही नहीं, अहिंसा परमो धर्म हमें यहां बनना है, राइट। तो ये स्थिति हमारी तब थी, परफेक्ट स्थिति थी। तो हमारे अंदर जब आठ जन्म हमने लिए सत्युग में, तो हमारी एनर्जी 25% कम हो गई, 75% हो गई, तो हमारे त्रेता युग आ गया, राइट। तो एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ? वो दैवी गुणों की एनर्जी 25% कम हो गई, राइट। स्पेशली अतीन्द्रिय सुख आनंद की कमी हो गई, सुख और आनंद थोड़ा कम हो गया, ज्ञान रहा, पवित्रता रही, शांति रही, प्रेम भी रहा, पर अतीन्द्रिय सुख कम हो गया, आनंद कम हो गया, है ना, वो कम हो गया था, आनंद सुख और आनंद कम हो गया, और शक्तियां तो रही। फिर 12 जन्म और बीते तो क्या हुआ? त्रेता पूरा हो गया, आत्मा की एनर्जी कितनी हो गई? 50% हो गई। तब त्रेता के अंत तक आत्मा राजा थी, मन प्रधानमंत्री था, बुद्धि दीवान थी, और संस्कार सेनापति थे, है ना, राइट। तो जैसे ही आत्मा की एनर्जी 49% हुई तो क्या हुआ? मन की एनर्जी क्या हो गई? 51% हो गई। राजा कौन बन गया? मन राजा बन गया। कौन बन गया राजा? मन राजा बन गया, और आत्मा उसके अंडर आ गई। कॉर्पोरेट में होता है ना, जिसके शेयर ज्यादा होते हैं ना वो राजा बन, वो एमडी बन जाता है ना, तो इसलिए हम मनुष्य कहलाए, राइट। क्योंकि मन का कनेक्शन शरीर के साथ था, तो शरीर के साथ कनेक्शन था, तो क्या हुआ? अब वो शरीर से, शरीर का भान आने लगा, देह भान आने लगा, देह अभिमान आना शुरू हो गया, मेल फीमेल का भान आना शुरू हुआ, अंदर डर पैदा हुआ, डर से देह की तरफ ध्यान गया, दूसरे की देह की तरफ ध्यान गया, देह का आकर्षण हुआ तो काम विकार आया। फिर वो किसी ने उसकी तरफ देखा, मेरे एरिया मैंने कोशिश की, क्रोध आया, डर से पैदा हुआ, लोभ भी डर से पैदा हुआ, मैं ज्यादा इकट्ठा कर लूं, मोह भी डर से पैदा हुआ, जो मेरे रहे मेरे आसपास ही रहे, अहंकार जो इकट्ठा किया था उसका अहंकार हो गया। तब तक बीमारियां बहुत थोड़ी थी, सिर्फ राजाओं को होती थी, रॉयल फैमिली में बीमारियां होती थी, नीचे पब्लिक में राजा प्रॉब्लम नहीं थी, प्रकृति इतनी खराब नहीं हुई थी, सिद्धियां थी। पर जैसे ही इनके कारण ये जब पांच विकारों के वश कर्म किए ना, तो कुछ हमारी आदतें बन गई, संस्कार पैदा हो गए, आसुरी संस्कार पैदा होने लगे, आलस्य पैदा होने लगा, अलबेलापन पैदा होने लगा, दूसरों के अवगुण देखने शुरू किए, दोष दर्शन, हंस की बजाय बगुला बन गए, शक आपस में विश्वास, निश्चय और विश्वास खत्म हो गया, समाज में शक और अनुमान शुरू हो गया, चिंता और भय शुरू हो गई, और जल्दबाजी, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, और ईर्ष्या द्वेष शुरू हो गया, तब बीमारियां आई, तब बीमारियां शुरू हुई, राइट। बीमारी एकदम शुरू नहीं हुई, तब ये पतंजलि योग आया, आया ना पतंजलि, प्राणायाम आया, शवासन आया, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तब पतंजलि योग आया, तब ये चरक संहिता लिखी गई, सुश्रुत संहिता लिखी गई, कहा ना धन्वंतरी और ये चरक ने शुरू किया, तभी ये किताबें लिखी गई, है ना, लोग सुधारने के लिए। उसमें समाधि 8वें नंबर पे आ गई, अष्टांग योग कहते ना, 8वें नंबर पर आ गई, यम नियम प्रत्याहार साधना प्रत्याहार आगे करके, फिर लास्ट में समाधि, और राजयोग में समाधि शुरू में थी, बिगनिंग में, है ना, हम लोग समाधि से शुरू करते हैं, हठ योग यहां खत्म होता है और राजयोग यहां से शुरू होता है ना, राइट, समझ में आई आपको। तब बीमारियां आई, तो तब पहले बीमारियां शुरू हुई, पहले बड़े बड़े लोगों में बीमारी शुरू हुई, धीरे धीरे प्रजा में फैल गई, प्रकृति तमो प्रधान हो गई, इस तरह से हम सब इस समय क्या हाल है, इस समय हम सब बीमार हैं। जब एक सर्वे 2015 में हुआ था तो पता लगा, 2015 में भारत का सर्वे था, हर आदमी को 2 बीमारियां हैं शरीर की, एवरेज 16 को 200 बीमारियां हैं, और मन की लगभग 6 बीमारियां सबको हैं, जैसे उदासी है, नींद ना आना है, जल्दबाजी करना, चिंता करना, चिंता बीमारी है ना, नहीं गुस्सा करना बीमारी कि नहीं है, है ना। तो ये सब बीमारियां हैं, सारी बीमारियां, मन की डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी रहती है, हमेशा चिंता रहती है, बताया ना, गुस्सा आना और दूसरों के अवगुण ढूंढना, सिनिकल बिहेवियर, एस्फोस्टाइल बिहेवियर, ये सब शुरू हो गए आज समाज में। इसलिए आज क्या है, चारों तरफ दुख है, परेशानी है, मन के रोगी, तन के रोगी सब भी हैं, सभी हैं। अगर हम टेस्ट कराएं सारी, और ये पिछले 1970 के बाद, 1970 के बाद, 1970 के पहले क्या होता है, इन्फेक्शन होते थे, कोई ना कोई हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, टीबी हो गई, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो गई, कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई और पेट का इन्फेक्शन हो गया, गांव के गांव साफ हो जाते थे, बहुत लोग मर जाते थे, सारे गांव में हैजा फैल जाता था, लोग मर जाते थे, बीमारियां आती थी, लोग ऐसे कैसे मर जाते थे, कितने लोग मर जाते थे, बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, माँ भी मर जाती थी, इन्फेक्शन होते थे ना, केयर नहीं होती थी। फिर क्या हुआ, 1970 के टाइम क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भारत का, और विदेशों में भी प्रगति हुई, तो क्या हुआ, जीवन शैली बिगड़ गई, जीने का ढंग बिगड़ गया, तो लोगों में क्या बीमारियां आ गई, पहले 100 में से एक आदमी को हाई ब्लड प्रेशर था 1960 में, वो भी बड़े बड़े लोगों को होता था, पैसे वालों को। डायबिटीज 100 में से एक आदमी को भी नहीं थी, बहुत रेयर डायबिटीज थी, भारत में डायबिटीज थी नहीं, मोटापा था ही नहीं भारत में, कोई लोग मोटे होते ही नहीं थे, है ना, भारत में हार्ट की बीमारी होती नहीं थी, 100 में से एक आदमी को होती थी सिर्फ, वो भी अमीरों को, स्टेटस सिंबल था, है ना। एसिडिटी की बीमारी थी नहीं, सांस की बीमारी लगभग थी, ना के बराबर थी, स्किन की बीमारियां नहीं थी, हड्डियां कमजोर नहीं थी, है ना, दांतों में कीड़े नहीं लगते थे, अभी तो सबके दांतों में कीड़े हैं, है ना, नहीं है, चश्मा नहीं होता था, है ना, अभी चश्मा कितने लोगों को लगा, 50% लोगों को चश्मा लग जाता है ना, तो पहले बीमारियां नहीं थी, ये 70 के बाद ही बीमारियां बढ़ी हैं सारी, इनको कहते हैं जीवन शैली, गलत जीवन शैली की बीमारियां। जब दिल्ली में मैं काम कर रहा था एक हार्ट के हॉस्पिटल में, तो तब मैंने देखा, हम लोग 94-95 की बात है, तो मैं दिल्ली से मैंने पढ़ाई की, MBBS किया, MD किया, फर्दर कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया थोड़ा, और सारे काम किए दिल्ली में ही, कार्य करते करते मैंने देखा गंगाराम में, पहले एम्स में था, फिर गंगाराम में रहा, फिर मैं एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में आ गया, तो मैं देखा लोगों को हार्ट अटैक होते थे जल्दी उम्र में, 35-36 में हार्ट अटैक आया, हमने इसकी स्टेंट लगा दिया, एंजियोप्लास्टी कर दी या बाईपास कर दिया, 3-4 महीने में, 6 महीने फिर दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, फिर हमने एंजियोग्राफी की तो देखा ब्लॉक वापस स्टेंट बंद हो गया और 2-3 नए ब्लॉक आ गए, हमने कहा भी अभी बाईपास करना पड़ेगा या 2 स्टेंट लगवाने पड़ेंगे, हमने कहा इतने पैसे जमा करा दो, तो पेशेंट क्या बोलते थे, डॉक्टर साहब हमने पहली एंजियोप्लास्टी कराई ना तो अपना घर बेचना पड़ा, अभी हम क्या बेचें, तो मेरे को संकल्प चलते थे, क्योंकि मैं 1986 में ही एम्स में, जब दिल्ली एम्स में था तभी भी ज्ञान में आ गए थे, और वहां भी एम्स में ज्ञान में कैसे आए थे वो नहीं, वो टाइम का मैं इसलिए बात नहीं करता हूं, तो वो जो है हम, तो उस समय जो है मुझे पता था, तो मैं तब एक ऐसा मेरे मन में आया, क्योंकि मैं उसमें ऐसी रिसर्च आ रही थी, जो जल्दबाजी करते ना टाइम की जल्दी, टाइप ए नेचर के लोग होते हैं उनको 3 गुना अधिक हार्ट अटैक होते हैं, जो चिंता करते हैं उनको 2 गुना अधिक हार्ट अटैक होते हैं, जो गुस्सा करते हैं उनको 3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक होते हैं। आप गुस्सा करते नहीं करते, जो गुस्सा करते हैं वो एक बाइक पर गुस्सा करने का 3 दिन तक 3 गुना अधिक चांस रहता है हार्ट अटैक आने का, 2 बार कर लिया तो डबल हो गया ना, जो बात बात में उदास हो जाते हैं उनको 5 गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के, जो दूसरों के अवगुण देखते रहते हैं, दोष दर्शन करते हैं, उनको ज्यादा चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के, जो अपने मन की बातों को, टेंशन को शेयर नहीं करते अपने घर वालों को या किसी को, तो उनको भी 3 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने के। कहा जाता था अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से, राइट, तभी ऑपरेशन कराना पड़ता ना। तो ये बीमारी बढ़ती जा रही है ना, तो ये बीमारियां बढ़ रही थी, एसिडिटी बनना, कब्जी होना, हड्डियों में दर्द होना, घुटने खराब, कमर खराब, गर्दन की हड्डी खराब, हमारी माताओं को तो 50 के बाद तो क्या होता है उनकी तो 50% ज्यादा माताओं को हड्डियों की तकलीफ, एसिडिटी की बीमारी, आधी माताओं को एसिडिटी की बीमारी है ना, अभी मैं हाथ उठाऊंगा ना, हाथ उठाओ जिनको एसिडिटी की बीमारी है, गला सूखना, एसिडिटी होना, सिर में भारीपन लगना, हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, बहुत लोगों को होती है। तो ये बीमारियां, मोटापा, ओबेसिटी 40% लोगों को हो गई है ना, तो अब ये देखने में आया कि हमने रिसर्च प्रोग्राम बनाया डॉक्टर कलाम साहब के साथ दिल्ली में, वो रिसर्च करने के लिए फिर मैं यहां पर आ गया। ये जो हमने यहां दिखा रहे हैं शायद यहां पर आयुर्वेद भाई दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो हमने जो प्रोग्राम बनाया कि क्या हम हार्ट के पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं, तो वो रिसर्च करने के लिए फिर माउंट आबू शिफ्ट हो गया। 95 अप्रैल 1995 में माउंट आबू शिफ्ट हो गया। मार्च 2 मार्च 2019 को मैं डॉक्टर कलाम साहब से मिला था। उस सोचो 15 अप्रैल 1995 को मैं यहां पर था माउंट आबू, दिल्ली छोड़ दी थी और माउंट आबू शिफ्ट हो गया था ये रिसर्च करने के लिए। और तब से मैं फिर मैं आया था, शुरू में 5 साल के लिए था, ये तो मैं रह गया फिर 30 साल से अब यहीं पे हूं। 27 फरवरी 1998 को पहला ग्रुप हार्ट के पेशेंट्स का आया और हमने देखा उनको, हम अपने पास 7 दिन रखते थे। पेशेंट जो मान ली हस्बैंड पेशेंट है तो वाइफ को जरूर बुलाते थे, क्योंकि बाबा की डायरेक्शन थी कि बच्चे अगर पति बीमार है तो पत्नी को जरूर बुलाना है, और पत्नी बीमार है तो पति को जरूर बुलाना है। क्यों क्यों बुलाना है? पति की हार्ट की बीमारी क्यों हुई, उसकी जड़ कौन है? बिना पत्नी के सहयोग के ठीक नहीं हो सकती है ना। और पत्नी बीमार हो गई तो उसको हार्ट की बीमारी क्यों हुई, क्योंकि उसके पति के सहयोग से ही ठीक होगी। दोनों एक दूसरे की जड़ है बीमारी की ना, इसे दोनों को बुलाया जाता है, राइट। और क्योंकि आधे पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर होता है, 1/3 को डायबिटीज होती है, मोटापा 30-40% लोग मोटे होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल 70% लोगों को होता है। तो इस बीच में हमने देखा, 2 साल बाद दोबारा एंजियोग्राफी कराई, कुछ लोगों के 1 साल बाद एंजियोग्राफी कराई, तो 100% ब्लॉकेज भी खुल गए, जो एकदम 100% हड्डी जैसे बन गए थे ना, पत्थर जैसे, 90% ब्लॉक खुल गए। डॉक्टर्स को आश्चर्य हो रहा था कि ब्लॉक कैसे खुल गए। 7 दिन में हम क्या करते हैं अपने यहां पर, उनका पूरा बॉडी के बारे में पढ़ाते हैं, पूरा शरीर के बारे में, डिफरेंट अंग कैसे कैसे काम करते हैं, पूरे ब्रेन कैसे काम करता है, आंखें, नाक, कान, मुख, हमारी जो इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करते हैं, हार्ट कैसे काम करता है, हमारा लीवर, हमारा पेट कैसे काम करता है, हमारा हार्मोनल सिस्टम कैसे काम करता है, ज्वाइंट्स कैसे काम करते हैं, हड्डियां कैसे काम करती हैं, किडनी कैसे काम करती है, 8 अंग होते हैं ना बॉडी में। फिर मन क्या है, संस्कार क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, वो कैसे काम करते हैं, माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है, आत्मा की कौन सी एनर्जी, मन से कौन सी एनर्जी हमारी बॉडी में कैसे जाती है, बीमारियां होती क्यों है, कोई बीमारी भी, हार्ट की ब्लॉकेज क्यों होते हैं, डायबिटीज क्यों होती है, मोटापा क्यों होता है, हमारा बीपी हाई क्यों होता है, उनको बकायदा सिखाया गया। हर बीमारी कैसे होती है, एसिडिटी क्यों बन जाती है, कब्जी क्यों होती है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमारी सैर कैसे होनी चाहिए, सोने का सिस्टम क्या है, वो सारी बातें गहराई से समझाई जाती है, 7 दिन में पूरी समझाई जाती है। और फिर हमने देखा कि जैसे जैसे लोगों ने फिर उसको एक चार्ट बना के देते हैं, वो चार्ट मैं भी फॉलो करता हूं, मेरे पास भी देखो चार्ट है, मैं 27 साल से भरता हूं, है ना, रोज भरता हूं, उसमें दिनचर्या का चार्ट भी है, घंटे घंटे याद का चार्ट भी है, 1 घंटे में कितने मिनट हमें परमात्मा की याद रही, देखो इधर तो दिनचर्या का चार्ट है, एक हर घंटे में कितने मिनट याद की, तो 24 घंटे में मतलब दिन में सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कैसे मेरा दिन बीता, राइट, उसमें पूरा पूरा याद करते हैं, सबको चार्ट भरना होता है और एक एक बात उनको लिख के भेजनी है, एक तारीख को हमको व्हाट्सएप पे भेजते हैं, पहले तो फैक्स करते थे, अभी हमको बाई व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, तो हमारे पास एक ही चीज का रिकॉर्ड रहता है। तो हमने देखा कि जब पेशेंट को दोबारा एंजियोग्राफी कराई 1 साल के बाद, तो उनके ब्लॉक खुलने लगे, उनकी डायबिटीज ठीक होने शुरू हो गए, जिनको डायबिटीज HbA1c जिनका 13-14 रहता था, शुगर इंसुलिन लेने के बाद भी 450 रहती थी, शुगर ठीक होने शुरू हो गई, HbA1c 6 से भी कम आ गया, इंसुलिन छूट गई, गोलियां भी कम हो गई, गोलियां छूट भी गई, तो ऐसे लोगों की ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, जिनकी 4-5 गोली खाते हैं डायबिटीज ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, मोटापा भी ठीक हो गया, जिनका 100 किलो वजन था वो 52 किलो के हो गए, 55 किलो के हो गए, 140 किलो वजन था 70 किलो 80 किलो के हो गए, है ना। ऐसे सारी बीमारियां, एसिडिटी ठीक हो गई, डिप्रेशन ठीक हो गया, एक तो मोटा पेशेंट था हमारा 140 किलो का, तो मैंने बताया था कल भी, मैंने माताओं को शेयर किया था, इतना उसको डिप्रेशन हो गया था कि वो सोचता था मैं कैसे, मुझको लगता था मैं मरने वाला हूं। तो एक बार उसने क्या किया, घर में पंखे पर लटक गया, वो पंखा ही नीचे आ गया, एक बार पार्क में जाके पेड़ की डाली पे लटक गया, रस्सी डाल के, रस्सी वो डाली नीचे आ गई, फिर इसके बाद उसने जहर खा लिया, तो जहर का तो वो जहरी नकली निकला, एक बार नींद की गोली खा ली से 25-30, वो गोली खा के फिर डेढ़ दिन में उठ गया। तो क्लास में बताता था, हमको अनुभव सुनाता था अपना। तो मतलब ऐसे कितने पेशेंट्स ऐसे, डिप्रेशन ठीक हो जाता, एंजाइटी ठीक हो जाती थी, नींद आनी शुरू हो जाती। तो हमने देखा पिछले 27 साल में खाली हार्ट की बीमारी नहीं, राजयोग मेडिटेशन, इसको हम बोलते हैं 3D हेल्थ केयर योग, डाला उस पर आया, इस पर आगे दिख रहा है आपको 3D हेल्थ केयर राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। दुनिया में जो है सिर्फ बॉडी की केयर होती है, ये 3D हेल्थ केयर में ना 3D स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल केयर, तीनों की केयर। और राजयोग मेडिटेटिव, राजयोग मेडिटेशन से हमारा जीवन राजयोग मेडिटेशन बन जाए। हमारे हर क्षेत्र श्वासों श्वास हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कंबाइंड होके हर काम करें। तो राजयोग से क्या होता है कि हमारी हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस खुल जाए, हमारी डायबिटीज ठीक हो जाए, हमारे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, हमारा मोटापा ठीक हो जाए, हमारी एसिडिटी ठीक हो जाए, हमारी कब्जी ठीक हो जाए, IBS ठीक हो जाए, पेट बार बार जाना पड़ता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाए, हड्डियों की बीमारियां ठीक हो जाए, है ना, सांस की तकलीफें ठीक हो जाए, नींद अच्छी आनी शुरू हो जाए, तो सारी बीमारी, फैटी लिवर ठीक हो जाए, तो सारी बीमारी ठीक हो सकती है। क्योंकि आने वाली दुनिया स्वर्ग कैसे बनेगी, स्वर्ग कहां बनाएंगे हम, अपने अंदर स्वर्ग स्थापन करना है ना। स्व माने आत्मा, अर्घ माना देवी गुण, अपने आप को देवी गुणों से भरना है। नरक माना ना अर्क, आत्मा में अर्क नहीं, अर्क माना सातो एनर्जी। अब आत्मा में ना ज्ञान है, ना पवित्रता, ना शांति, ना प्रेम, ना सुख, ना आनंद, ना शक्तियां। तो अब नरक हमारे अंदर है। तो बाबा मम्मा की मुरली में भी था ना उस दिन, कि हमें क्या करना है, आत्माएं जब सतो प्रधान बनेंगी तो अपने आप ये प्रकृति, शरीर रूपी प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी, स्वस्थ बन जाएगी, और सारा विश्व की, सारे विश्व के पांचों तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। तो जैसा इसका तरीका क्या है, मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं। आत्मा के साथ एनर्जी है, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में हम पहले दिल में अंतर्मुखी बनना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, पहले अंतर्मुखी बनना पड़ता है। ब्राह्मण मनाई क्या, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, तो हमको पुराने जन्म से मरना पड़ता है, राइट। मेरे दिल में, जैसे मैं पुराने जन्म से मरता हूं, मेरे दिल में शिव बाबा आ जाता है। शिव बाबा माने ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, और अशक्तियां मेरे, उसका सागर मेरे दिल में आ गया। उससे मेरी तीसरी आंख खुल जाती है, और तीसरी आंख खुलने से जो बाबा की मुरली है ना, मेरे को समझ में आने लगती है। बाबा की जो मुरली है, आज की मुरली है ना, ये मुरली जो है बाबा की, हरेक के लिए क्या है, उसका अर्थ अलग अलग है। मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं, उसका अर्थ मेरे हिसाब से है, आपका अर्थ आपके हिसाब से, आपका अर्थ आपके हिसाब से। हर एक के लिए जादू की पुड़िया ही है, क्या है, अमृत धारा है ना, हर एक के लिए अलग अलग है, सबके लिए सॉल्यूशन है इसमें। ये मुरली खजाना है, सारी बीमारियों को ठीक करने का तरीका मुरली है, यही संजीवनी बूटी है। तो ये मुरली कैसे हमें, जब दिल में बाबा होता है उसकी याद अपने आप आती है। जैसे मेरे दिल में मान लीजिए मेरी माँ है, तो मुझे माँ की याद आएगी और माँ की कही हुई बातें याद आएंगी। तो मेरे दिल में अगर बाबा है तो मेरे को बाबा याद आएगा, और कौन याद आएगा, बाबा की बातें याद आएंगी। ये बाबा की बातें ही मुरली है ना, नहीं तो इससे मेरे अंदर ज्ञान स्वरूप स्थिति आती है, साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। पवित्रता अर्थात मेरे अंदर अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, बचपन का स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप मेरी बुद्धि में आ जाता है, उसमें स्थित होकर मैं कार्य करता हूं, सामने वाला का वही स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार, इसको पवित्रता कहते हैं। जब पवित्रता आ जाती है तो पास्ट को फुल स्टॉप लग जाता है, और अपने सत्य में टिके परम सत्य भाव से कंबाइंड होकर कर्म करने लगता हूं, तो मेरे अंदर शांति आ जाती है। विचार 90% विचार कट जाते हैं, वर्तमान में रहने लगता हूं। जब वर्तमान में बाबा के साथ रहने लगता हूं तो सबके पार्ट को देख के मैं हर्षित होता हूं। मेरे गाली देने वाला, आज की मुरली थी ना, वरदान था ना, कोई गाली दे रहा हो मेरे को, कुछ भी कर रहा हो, अपमान कर रहा हो, तो भी उसका पार्ट है, साक्षी। आज की मुरली में भी था, साक्षियों को देखता हूं और सबको एक्सेप्ट करता हूं बराबर, और सबकी पालना करता हूं। इसको प्यार कहते हैं, इसको स्नेह कहते हैं। अर्थात गाली देने वाला, अपमान करने वाला और महिमा करने, दोनों बराबर लगे, दोनों की बराबर पालना करें। जैसे माँ एक बच्चा है, उसका सांवले रंग का बच्चा है, एक गोरे रंग का और एक पैरालिसिस वाला बच्चा, तो माँ क्या करती है, पैरालिसिस वाले बच्चे को छोड़ देती है, सांवले की पालना नहीं करती, तीनों की बराबर पालना करती है, बल्कि कमजोर बच्चे की ज्यादा पालना करती है। इसको बोलते स्नेह, इसको बोलते प्यार। परमात्मा प्यार का सागर है ना, तो ऐसा प्यार, जब हमारा प्यार ऐसा होगा कभी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता है। राइट, सबके लिए ऐसा प्यार हो, विश्व में हर आत्मा के लिए ऐसा प्यार होगा, तब हमारे अंदर हार्ट की बीमारी हो ही नहीं सकती, हमारे सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे, राइट। तो जब ऐसा प्यार सारे, तो बाबा की गोद में जा सकते हो, उसको अतींद्रिय सुख कहते हैं। और बाबा की गोद में जाने के बाद वो जो प्राप्ति होती है ना, उससे आपका लिवर ठीक हो जाता है, उससे आपका पेट ठीक हो जाएगा, प्यार से आपका हार्ट ठीक हो जाएगा, खुशी से अतींद्रिय सुख से आपका लिवर ठीक हो जाएगा, खुशी से आपका पेट ठीक हो जाएगा, एसिडिटी बननी बंद हो जाएगी, हाजमा ठीक हो जाएगा, कब्ज ठीक हो जाएगी, है ना। और आनंद से आपका थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होने लग जाएगी, डायबिटीज ठीक होने शुरू हो जाएगी, है ना। शांति से फेफड़ों की बीमारी ठीक होने शुरू हो जाएगी। तो सातों एनर्जी बॉडी की जो आत्मा है ना, और सातों जब हड्डियों को आठों शक्तियां, कैल्शियम खाकर ठीक नहीं होगी, विटामिन डी खाकर वो भी खाओ जरूरी है, फिर तो मेन कारण आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है। आप सहन तो कर लेते हो, समा नहीं पाते, उबलते रहते हो अंदर अंदर, इसलिए हड्डियों में दर्द होती है, सिर में दर्द होती है, गर्दन में दर्द होती है, जिद्दी नेचर बन जाती है ना, स्टबर्न नेचर, तो गर्दन खराब हो जाती है, राई का पहाड़ बनाने लगता है तो कमर की हड्डी खराब हो जाती है। तो ऐसे हमारी हर ज्वाइंट का कनेक्शन हमारी शक्तियों से है, तो शक्तियां कम होती है तो जोड़ खराब हो जाते हैं, हड्डियां खराब, मसल्स में पेन होने लगती है, कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द, कभी पिंडलियों में दर्द, कभी कहीं क्रैम्प्स आते हैं, कभी कुछ होता है, राइट। वो अपने तत्व अपना काम करते हैं, तो सातों एनर्जी के बैलेंस से हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी से टॉक्सिन भरने, फिर पसीने में बदबूआनी बंद हो जाती है, पेट साफ रहने लगता है ना, और हमारा किडनी ठीक काम करने लगती है, हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी शुरू हो जाती है बाहर, पसीने में सारा गंदगी बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, सैर कैसी होनी चाहिए, 10 बजे सोना, बाबा हमें नई दिनचर्या सिखा रहा है, हमारे अंदर घड़ी है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो घड़ी के अनुसार हमको जीना है, हमको बाबा अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन करना सिखा रहा है, उससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। 8 बजे तक हम चुप रहते हैं, बाबा की मुरली का मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे कॉर्टिसोल हार्मोन इतना बैलेंस में निकलता है कि एनर्जी बॉडी के अंगों में आ जाती है, फिर शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर और शुद्ध सात्विक नींद, और दवाइयां भी अगर हमारा हिसाब किताब है डॉक्टर के साथ, तो दवाई भी हम टाइम पे खा लेते हैं, रोके दवाई नहीं खाते हैं, प्यार से दवाई खाते हैं, हिसाब किताब चुकते हो जाता है तो हमारी दवाइयां भी एक दिन छूट जाती हैं। हमने देखा आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दवाई 11,000 से अधिक हार्ट के पेशेंट जिनकी एंजियोग्राफी हुई थी, आज वो ठीक हो चुके हैं, उनकी हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो गई, डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। तो ये प्रोग्राम जो होता है, ये हमारा जो है युवरतन भाई है, यहाँ पर हमारा कैड ऑफिस है, यहाँ पर आनंद भवन में फोटोकॉपी डिपार्टमेंट के सामने, तो उसमें आपको अगर फॉर्म है उसका और फोल्डर भी है, तो अगर आप में से किसी को हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज हो, मोटापा कंट्रोल नहीं आ रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा, मोटापा और भी बीमारियां हैं, तो फॉर्म भर सकते हैं, आप उनसे 1 से 2 बजे भी बैठेंगे, शाम को 3 से 5 बजे भी बैठेंगे, तो उनसे आप मिल सकेंगे, और अपने लोगों की सेवा करो, क्योंकि स्वस्थ का मतलब क्या है, स्व माने आत्मा, अस्थ माने अस्तित्व। अगर स्वस्थ होना है तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते क्या करो, अपने को आत्मा समझ के हर काम करो, सत्युग में वैसे ही करते हैं, इसलिए हमारे बीमार नहीं है। ये प्रैक्टिस ही राजयोग सिखाती है, राजयोग हमारा पहला लेसन, आखिरी लेसन क्या है, मैं आत्मा हूं, तो ये ही इसमें सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल 7 दिन, बाबा ने एक बार कहा था, 16 बार बाबा मिले दिल वालों से, इनको दिल वाले कहते हैं, हार्ट पेशेंट नहीं कहते, दिल वाले कहते हैं, तो बाबा मिले हैं और बाबा ने कहा ये प्रोग्राम जो है, गुलजारदादी के द्वारा मैसेज में आया था कि ये प्रोग्राम जो है बीकेज जो होते हैं इसको प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो वारिस बन जाते हैं, वारिस क्वालिटी बन जाते हैं, और नॉन बीके बीके बन जाते हैं। तो आप इसकी खूब सेवा करो, अपने आसपास पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, उनको बताओ कि बाबा के घर में ऐसा एक प्रोग्राम है जिससे राजयोग से हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती है, डायबिटीज ठीक हो जाती है, मोटापा ठीक हो जाता है, सभी मन और तन की बीमारी ठीक हो जाती है। और अभी निर्भय भाई साहब जो थे हमारे, अभी जो लास्ट ईयर जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ एक, यहाँ से हमारे हॉस्पिटल की जमीन है, वहां पर एक ऐसा हम हॉस्पिटल बना रहे हैं आरोग्यम के नाम से, एकेडमी फॉर हेल्थी एंड हैप्पी वर्ल्ड, जिसमें एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा और एक ऐसा हम एक बनाएंगे जहाँ ये लगातार प्रोग्राम चलते रहेंगे और रिसर्च भी करेंगे कैसे राजयोग से हमारी सब बीमारियां ठीक होती हैं, और धीरे धीरे हम सारे बीमारियां राजयोग से ठीक करने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। युवरतन भाई है वहां पर कैड ऑफिस में, आप उनसे मिल लेना अगर कुछ को पूछना हो तो। 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे, चलो 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे, सीधे होकर बैठ जाओ, मैं आपको थोड़ा सा अभ्यास भी करा देता हूं। सभी अपने अंदर डिवाइस करते रहेंगे, महसूस करते जाएंगे, मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक के मध्य सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का स्वरूप, व्हाइट लाइट रखो आवश्यक, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का स्वरूप, शुभ विचार और शुभ भावनाओं के माध्यम से मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं, अपनी पांचों कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, बाहरी त्वचा, अंदरूनी त्वचा और शरीर के सभी 8 अंगों को के सभी लगभग 70 से 80 हजार अरब कोशिकाओं को पोषित कर रहे हैं। मैं सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परमधाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस परमपिता परमात्मा शिव बाबा से सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइंड हूं। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा मेरा सर्व संबंधी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, जुड़ जाओ बाबा के साथ, कंबाइंड हो जाओ। सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं बुद्धि रूपी तार से क्लीन और क्लियर बुद्धि से मुझ आत्मा की रूप आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर रही है। मुझ आत्मा की बैटरी अब सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर होती जा रही है। मैं आत्मा मन के माध्यम से अर्थात शुद्ध विचारों और शुभ भावनाओं, रूहानी वृत्ति और शुभ और श्रेष्ठ स्मृति के माध्यम से शरीर की हर कोशिका को, मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ स्नेह, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और अशक्तियों से पोषित कर रहे हैं। मेरे शरीर के एक एक कोशिका इन सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर हो रही है। मुझे आत्मा की बुद्धि, मन और संस्कार भी सत्वप्रधान बनते जा रहे हैं। मैं आत्मा परमधाम घर में पावर हाउस से कंबाइंड हूं और मैं आत्मा बुद्धि, मन और संस्कार और शरीर के 8 अंगों को सत्वप्रधान बना रहे हैं। इसी फीलिंग में टिक जाओ। परमात्मा से आत्मा में एनर्जी आ रही है और आत्मा से मन के माध्यम से शरीर के एक कोशिका पोषित होती जा रही है। बीच बीच में सारे दिन में 1 मिनट 2 मिनट भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो देखेंगे आपका तन और मन दोनों ही स्वस्थ होते जाएंगे। ये राजयोग का अभ्यास आपको सभी रोगों से मुक्त कर देगा। ओम शांति।